أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. تو دیکھتے ہیں تفسیر. وقیدنا لهم قرناء، مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے قرناء، ساتھی. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے سے اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، جنہوں نے کفر کیا، جن قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی، جن کے برے انجام ہوئے. اور ایسے ہی لوگ، ایسے ہی کافر جو ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مقرر کر دیتے ہیں ساتھی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ساتھی مقرر ہو جاتے ہیں. وہ کون سے ساتھی ہیں؟ وہ شیطان ساتھی ہیں. وہ شیطان ساتھی جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جو پھر کیا کرتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو آئیڈیاز دیتے ہیں برے برے، ان کو سازشیں سجھاتے ہیں اسلام کے خلاف. اور جو ہدایت کی طرف آنے والا ہو، اس کے راستے کے بھی رکاوٹ بنانے کے لیے ان کو پلاننگز دیتے ہیں، یعنی ان کے مددگار بن جاتے ہیں دین کی مخالفت کرنے میں. تو یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور ایسوں کے ظاہر ہے ساتھی کوئی فرشتے تو نہیں ہو سکتے، شیاطین ہی ہوں گے. سورہ زخرف میں بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں. اب یعنی اب ان کے لیے شیطان مقرر ہو گئے. اب ہم یہ سوچیں، وقیدنا یہاں پہ کہا گیا مقرر کر دیا ہم نے، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ انڈے کی جو بالائی چھلکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی بالکل ساتھ ان کے لگ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں ان کے ساتھ. تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہم پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی انکلینیشن کسی راستے کی طرف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہی راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسی کو آسان کر دیتا ہے. اب ان کے لیے کون سا راستہ کھل گیا؟ گمراہی کا راستہ. ان کے دوست یہ شیطان بن گئے. اب ہدایت آنی بھی ہوگی نا، تو نہیں آ سکے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ جو یہ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کو راستے سے روکتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. حتیٰ کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان، تیرے کس کے، یعنی جو ان کے قرآن ہیں، ان کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا. یہ بہت ہی آیت انسان کو جگا دینے والی ہے. دیکھیں جب انسان برے راستے پر چلتا ہے تو اس کو ساتھی بھی ویسے ہی مل جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، کوئی اگر برا ہے تو نیک لوگوں کو تو ساتھی نہیں بنائے گا، ان سے تو اس کو الرجی ہوگی. برے کے ساتھی برے ہی بنتے ہیں، اور یہ ساتھی پھر اس کو برائی میں اور آگے لے کر جاتے ہیں، پیچھے نہیں جانے دیتے. اور یہ کیا کرتے ہیں پھر؟ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، مزین کر دیتے ہیں، خوش نما بنا دیتے ہیں ان کے لیے جو آگے ہے اور پیچھے ہے. کیا آگے اور کیا پیچھے ہے؟ آگے تو جو فیوچر کی چیزیں ہیں ان کو خوش نما بنا بنا کے دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اور ہم ایسے بڑے جو برائی کی چیزیں ہیں ان کو اتنا بیوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ دوسرا ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتا اس کو. یعنی اتنا بیوٹیفائی کرنا کیسے ہوتا ہے؟ مسئلہ ہے کہ آپ ایک بہت خوبصورت گفٹ بیگ کے اندر زہر ڈال کے کسی کو دے دیں تو بظاہر دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی ریپنگ بہت خوبصورت ہے، وہ لگ بہت پیارا رہا ہے، لیکن اندر اس کے زہر ہے. یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آگے کی چیزوں کو، یعنی برائیوں کو، ان کے لیے خوشنما بنا دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ کوئی برے برے کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں مثلاً کہ کئی فلمیں بناتے ہیں، کوئی ایسی بے حیائی کی چیزیں بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں بس دعا کریں اللہ ہماری فلم کو کامیاب کر دے، انشاءاللہ کامیاب ہوگی. یعنی कि कैसे शैतान ने उनके लिए बुराई को भी मुजयन कर दिया कि उसके अंदर भी उनको लग रहा है कि अच्छे अच्छा काम है, इसके अंदर क्या बुरा है, और पीछे की चीजों को भी मुजयन कर देते हैं, पास्ट में जो उन्होंने अमल किया उनको मुजयन कर देते हैं, उसको मुजयन करने की क्या जरूरत है, फ्यूचर में तो चूंकि कराने हैं तो इसलिए उनको खूबसूरत बना के दिखाते हैं तो वो कर लेते हैं, पीछे की चीजों को कैसे खूबसूरत बनाया जाता है, क्यों बनाते हैं वो खूबसूरत, सोचा आपने कभी माजी के अमाल को क्यों खूबसूरत बनाते हैं, ये भी हमें चीजें ना अपने आप से क्वेश्चन करनी चाहिए, सोचना चाहिए। मैं तो आपको बता दूंगी लेकिन आप खुद भी थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे तो कई चीजें आपको फिर सोचना आएगा, दिमाग खुलेगा, कई चीजें समझ में आने लगेंगी खुद से। तो देखें जो पिछले आमाल हैं उनको इसलिए खूबसूरत बनाते हैं कि कोई इंसान अगर उनके ऊपर ज्यादा गौर करेगा और उसको अगर पता चल गया कि मैंने गलत किया है तो ये ना हो कि इसके अंदर गिल्ट आ जाए, ये ना हो कि फिर ये तौबा इस्तगफार कर ले, इसलिए उनको खुशनुमा बनाते हैं कि जो किया बड़ा अच्छा किया, आई फील गुड अबाउट इट, मैंने क्या बुरा किया, सारी दुनिया करती है, अगर मैंने कर लिया था तो क्या हो गया, हाँ जवानी में तो ऐसे काम हो ही जाते, यानी वो बजाय इसके कि उसके ऊपर शर्मिंदा हो, उसके ऊपर उनको कोई अफसोस हो, उसकी बजाय उनको क्या होता है, अच्छे लगते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं, भले लगते हैं। तो पास्ट को भी मुजयन करके दिखाता है और फ्यूचर के लिए भी कहता है जिंदगी एक दफा मिलती है, इसको मजे से जियो, चार दिन की जवानी है, मजे कर लो, ऐसी बातें करते हैं। और ये फील करवाता है, ये ऐसे साथी ये फील करवाते हैं कि जो मैंने किया है ना अच्छा किया है, मैं कोई इतनी बुरी नहीं हूं, लोग तो मेरे से भी ज्यादा बुरे बुरे काम करते हैं, तो दे फील गुड अबाउट इट, कोई अफसोस नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या है, वह हक अलैहिम अल-क़ौल फी उममिन, हक हो गई इन पर बात, कौन सी बात हक हो गई, अल्लाह ताला ने जो फरमाया था कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा, वो बात इनके ऊपर हक हो गई है, फी उममिन ग्रोहों में, कद खलत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्न वल इंस, जैसे कि उनके अंदर जो पहले गुजर चुके हैं उनके ऊपर भी हक हो गई, जो जिन और इंस के ग्रो जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की उनके ऊपर हक हुई थी ये बात और इन पर भी हक हो गई, इन्नहुम कानु खासिरीन, बेशक ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा खसारा पाने वाले हैं, ये हैं नुकसान उठाने वाले। अस्तग़फिरुल्लाह, इसका मतलब है अपनी कंपनी को देखना चाहिए कि मेरी कंपनी किन लोगों की, मेरा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, उनसे उठ के उनकी मजलिसों से उठ के मुझे नेकी का शौक लगता है या बुराई का, उसके बाद मुझे कुरान और दीन फालतू चीजें लगती हैं या मुझे और ज्यादा मोहब्बत हो जाती है इनसे, सोचना चाहिए ना। ये नहीं कि जो दोस्त चल रहे हैं बस बचपन के जी दोस्त हैं, आप बस चलते रहेंगे इसी तरह, बचपन के दोस्त हैं इसलिए प्यारे हैं, नहीं, दोस्त उसको बनाइए जो आपको दीन के रास्ते पर आगे लेकर जाए, ना कि आपके पास्ट और फ्यूचर को बुरे अमाल को मुजयन करके दिखाए। तुम सोचती बहुत हो, अरे छोड़ो इतनी इतनी बातों का क्या, ये तो आजकल सभी करते हैं, ऐसी कंपनी से फिर दूर रहे, उनका जो उनका अंजाम है उनका अंजाम वही है जो पिछली कौमों का, जिन्होंने नाफरमानियां की थी, जैसे उनके ऊपर वो बात हक हो गई अल्लाह ताला की, इनके ऊपर भी हक होगी। और इसके बाद बात आ रही है बड़ी ऐसे तकलीफ दे बात है, ये जो अगली आयत में आ रही है, और वो है कुरान का मुकाबला वो लोग कैसे करते थे। देखिए कुरान इस कदर जबरदस्त कलाम है अल्लाह का जो जिंदगियां बदल देता है, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अ मिरेकल। किसी किताब को पढ़ के लोगों की इस तरह से या कोई चीज ऐसी सुन के देख के लोगों की ऐसे जिंदगियां नहीं बदलती जैसे कुरान बदल देता है, और आप देखें सहाबा की जिंदगियां कैसे बदली थी। अब जब काफिरों ने ये देखा कि इनकी तो जिंदगियां बदल गई हैं, क्या बात है कि जो इस कुरान को सुनता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नहीं कुछ सुनाते थे, अपनी नहीं अपने को दर्श नहीं देते थे, कुरान सुनाते थे और उन लोगों को समझ आती थी, तो जो इस कलाम को सुनता है क्या बात है उसकी जिंदगी ऐसे बदल जाती है, इनको मारो पीटो इनको कुछ भी कर दो ये फिर इस कलमे को छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो इस कुरान में तो बड़ी तासीर है। अब वो चूंकि कितने उन्होंने हरबे इस्तेमाल कर दिए, और ये मक्की सूरत है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सोचे उन्होंने बड़े हरबे इस्तेमाल किए, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हाँ हम करें तो करें क्या। अब उन्होंने एक और टैक्टिक यूज किया कि लोगों तक कुरान ना पहुंचे। ये बड़े बड़े जो सरदार होते थे ना, खास तौर पे उनका काम होता था, जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि लौंडी ले आए कोई भाई आके गाने गाएंगी, ताकि लोग जो वहां जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान सुनते हैं वो इधर को आ जाए, किससे कहानियां ये वो सुनाने की महफिलें उन्होंने लगी, ताकि लोग कुरान से दूर हो जाए। बस उनका एजेंडा ये था। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल उन्हीं में गुजारे थे ना, उस वक्त कुछ नहीं था उनको प्रॉब्लम, जब आपने कुरान सुनाना शुरू किया तब प्रॉब्लम शुरू हुई। तो आपकी जात उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, ये कुरान जो आपकी जुबान से अदा होता था ये उनके लिए प्रॉब्लम था। तो अब इसका मुकाबला उन्होंने कैसे किया? وقال الذين كفروا, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, لا تسمعوا لهذا القرآن, ना सुनो इस कुरान को। क्यों ना सुनो? जिंदगियां बदलना चाहे। हम सोचते हैं हमें जब किसी लोगों को बुलाते हैं कुरान की तरफ तो कहते हैं हमें सब कुछ तो पता है, हमें पता है नमाज पढ़नी है, हमें पता है रोजा रखना है, आप हमें क्या और ऐसा बता देंगे कुरान में। देखें कुरान सिर्फ नमाज रोजे क्या नहीं बताता, कुरान जिंदगियों को फ्लिप कर देता है, फ्लिप कर देता है जिंदगी को, बिल्कुल बदल देता है जिंदगी को, और ये काम सिर्फ कुरान कर सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकते। ये बात काफरों को पता थी, हमें नहीं आज समझ आ रही ये बात। हम कहते कुरान की जरूरत क्या है? ये देखें उनको समझ आ गई थी ये कुरान क्या करता है। मुझे आपको क्यों नहीं समझ आती जिनका ईमान है इस कुरान पे? वो कहते इस कुरान को नहीं सुनो। नफरत या दुश्मनी उनको कुरान से थी, अल्लाह के कलाम से थी। वलगाओ, अब क्या करो? अब इसका तो कोई और तरीका नहीं उनका पता, बेहुदा कोई करो। प्लीज में जिस वक्त कुरान पढ़ा जा रहा हो तालियां बजाते थे, शोर मचाते थे, सीटियां बजाते थे, ताकि कुरान की आवाज डिफ्यूज हो जाए। जैसे मतलब ना, आप अगर बोल रहे हैं, आपका बच्चा अगर आगे खड़ा होके करना शुरू हो जाए और कानों में उंगलियां दे दे और ऊंची आवाज में करने लगे कि आपकी आवाज ही दब जाए, कैसा महसूस करेंगे? और ये अल्लाह के कलाम के मुकाबले में ऐसा कर रहे थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको अदा अल्लाह कहा, अल्लाह के दुश्मन। और ये किस लिए कर रहे थे? लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ, यानी तुम्हारी आवाज गालिब आ जाए, कुरान दब जाए, ये उनका एजेंडा था। तो ये अब उनकी एक तरीका था कुरान की आवाज को दबाने का। अब ठीक है, उन्होंने एक तरीके किया, उनकी अपनी समझ के मुताबिक उनको लगता था कि ये तरीका करेंगे तो हम इसको दबा लेंगे, हालांकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सवाल आज करने का ये है कि क्या आज भी कुरान की आवाज दबाई जाती है? हमें देखे ना, वरना उस वक्त अगर लोग ऐसे करते थे, काफरों ने ऐसा किया था, तो हमें तो ये बात बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हम तो मुसलमान है, हमें इसलिए बताया जा रहा है कहीं हम भी उन जैसा काम ना कर बैठे, भूलने से भी कि कुरान की बात हो रही हो और हम लोगों को दूसरी बेकार बातों में उलझा दें। ये किरदार काफरों का था, जो इस किरदार को आज अपनाएगा काफरों की मुमासलत कर रहा है। चलो ये नहीं है कह सकते हम वो काफिर हो गया, लेकिन उसने काफरों की मुमासलत की, उसने वो काम किया जो काफिर करते हैं, उसने इस्लाम दुश्मनी की, इसलिए हमें ये बात बताई जा रही यहाँ पर। तो आज कैसे कुरान की आवाज को दबाया जाता है कि ला तस्माउ, तुम सुनना ना, सुना बस कानों में ना जाए लोगों के, क्योंकि सबको पता है कि ये हक है। और आज कई लोग जो के नहीं भी कुरान पढ़े होते, वो भी बाज दफा ऐसी मिसालें देते हैं, जी हाँ हमारी एक दोस्त थी बड़ी अच्छी भली थी, बड़ी नॉर्मल थी वो। बस उसके बाद उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, पता नहीं क्या हो गया उसको, इतनी अजीब सी हो गई है, हिजाब लेने शुरू कर दिए, ये करी वो करी, तो पता नहीं अजीब सी उसकी हरकतें हो गई। मैंने उन लोगों को भी पता कि कुरान डस समथिंग, इसका कुछ असर है, कोई बात है इसके अंदर। काफरों ने तो हर हरबा इस्तेमाल किया, आज कौन कौन से हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं इस पे गौर करने की हमें जरूरत है, क्योंकि कुरान आज समझा जाता है कि ये कोई पता नहीं ऐसी कोई बैकवर्ड सी चीज है जो कि खास किस्म के लोग बस पढ़ते हैं। वो खास किस्म के लोग कौन से हैं? जो दाढ़ियों वाले हों, जिनकी शलवारें ऊंची हों, ये जो अबाए वाली हैं, ये जो स्कार्फ वाली हैं, बस ये कुरान पढ़ने लगे, बाकी नॉर्मल लोगों का थोड़ी काम है ये। और नॉर्मल उनके नजदीक कौन से लोग हैं जो ये सब काम नहीं करते, ये स्कार्फ वगैरह ये लेना ये उनका काम नहीं, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल लोग ये काम नहीं करते, ये तो इन लोगों का काम है, मौलवियों का तरीका, इसलिए वो इन्हीं को करने दो। और ये तो एक्सट्रीमिज्म फैलाता है, ये तो ऐसे करता है। आज ये शोर मीडिया से भी है और आज हमारे लोग भी इसी के अंदर शामिल हो गए, और कुरान जिंदगियों से निकल गया है। क्यों? इसलिए कि हमने उसकी आवाज को दबा दिया, जब सुनेंगे ही नहीं तो जिंदगी में कैसे आएगा? जिंदगी में तो उसकी आ सकता है जो सुन तो ले। आज देखें तरावी में कितनी जगह कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन क्या कुछ असर हो रहा है? आप अपने मसल ने, चलो यहाँ पे तो गैर मुस्लिम मुल्कों में हम रहते हैं, लेकिन आप अपने मुसलमान मुल्क में किसी एक शहर में देख लें, चप्पे चप्पे पे मस्जिद है और हर जगह तरावी हो रही है और कुरान खत्म किए जा रहे हैं, और पता नहीं एक शबीना भी हो रही है जिसमें 3 रातों में कुरान खत्म किया जा रहा है, और इस तरह से भी चल रहा है जहां पे इतना कुरान खत्म किया जा रहा है। एक एक शहर में देख लें कितनी मस्जिद है, हजारों की तादाद में मस्जिद है, और वहां पे हर रात कुरान पढ़ा जा रहा है, पूरे रमजान में कुरान खत्म हो रहा है, कितने हजारों कुरान खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद भी अमल ना बदले, कितनी अजीब बात है ना। काफिर तो कहते थे इससे जिंदगियां बदल जाती हैं, आज क्यों नहीं अमल बदल रहा? इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही है जैसे सुना और ना सुना बराबर, लोग खड़े हैं लेकिन ऐसे है कि ला तस्मौ ना तुम सुनो, क्योंकि जब समझ ही नहीं आएगा तो सुनेगा, सुनने यानी एक आवाज है जो कान से टकरा रही है। ये जुल्म हो गया इस कुरान के साथ जो इस उम्मत ने किया है, ये जुल्म है, ये समझना नहीं है। अब सुनना ना सुनना बराबर, क्या जिंदगी बदलेगी जब आपको कोई समझ ही नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। अब इसमें देखें, एक तो ये बात हुई कि हम लोगों ने इस तरह से कुरान को जिंदगी से निकाल दिया कि हमें समझ में नहीं आता, दूसरी और क्या चीजें की, इसकी जगह पर हम और चीजें ले आए जिनमें हम मशगूल हैं और कुरान को पीछे किया हुआ, ऐसे ड्रामे, ऐसे अफसाने, ऐसे और चीजें जो कि कुरान के अलावा हैं, चाहे वो कोई दीन कुतब ही क्यों ना हो, कि कोई दीन की किताबें क्यों ना हो, लेकिन कुरान बस ना लोगों को सुने। ये हमने जब ऐसी मसरूफियत दे दी लोगों को, ये लघवियात है ना, इनमें जब लोगों को फंसा दिया तो अब कोई जरूरत ही नहीं रह गई कुरान की, अब किसके पास टाइम है कुरान के लिए। तो हमने जब अल्टरनेट कोई साथ ही कोई चीज, आप देख लें कि एक वक्त आपका कुरान के साथ गुजर रहा है, एक बंदे का वही वक्त किसी टीवी के आगे बैठे हुए, किसी सेलफोन पे, किसी आईपैड पे, किसी इस पे भी गुजर सकता है, बेशुमार और चीजें आपकी, ये फोन के अंदर इतनी एप्स हैं, एक कुरान की भी ऐप होगी। आप देखें उन एप्स में कई खबरें भी हैं, कई वेदर भी है, कई ड्रामे भी हैं, कई कुछ है, वो जो चूज करना है, एक कुरान की भी ऐप है, चूज करना आपका काम है ना। आप खोलते हैं अपने फोन को, आपकी चॉइस है। अब वो सारी लघवियात जब एक तरफ होती है, वो ऐसे ही है जैसे एक लौंडी खड़ी होकर गाना गा रही है, एक तरफ वो गा रही है, एक तरफ कुरान पढ़ा जा रहा है। अब लोगों की चॉइस होती थी ना, वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। हमारे पास जब ये फोन्स हैं, इनके अंदर इतनी इतनी कुछ भरमार है चीजों की, हम उनको चूज करते हैं और कुरान को छोड़ देते हैं।